आगे देखिए आयत 45 से 49 में, रुकू 18, हयाते दुनिया की हकीकत। हयाते दुनिया की हकीकत, वद्रिब लहू मसलल हयाते दुनिया। अब उसी वाक़े के ऊपर एक तबसरा है, और इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं और इससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का बाग ऐसे ही उगता है और ऐसे ही उजड़ जाता है। आप देखिए कि बच्चियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं ना, खूबसूरती आती है। एक तो पैदा होता बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, कहते हैं गधे का बच्चा भी बड़ा प्यारा होता है, बाद में ही कोई कान छान लंबे हो जाते हैं। बच्चा जैसा भी हो कितना मासूम लगता है, मास्टरपीस, शाहकार। और मैं तो ये सोचती हूँ अल्लाह आपने क्या बनाया, उसकी उंगलियाँ देखिए, उसके नाखून देखिए, उनके छोटे छोटे पोर देखिए, स्किन की सॉफ्टनेस देखिए। बच्चा बच्चा ही होता है, ज़रा से बड़े होने लगते हैं तो वो डिबघड़बे से होने शुरू हो जाते हैं। लड़के ज़रा ख़ास तौर पर अजीबोगरीब होते हैं, लड़कियाँ भी। फिर उसके बाद दोबारा 12-14 साल में रंग आता है, फिर जवानी में तो कोई हमसे पूछे ज़रा, फिर ज़रा दुल्हन बन गए तो दुल्हन कैसी थी, फिर जो बन आता है, फिर 20-25 के बीच में तो औरत बड़ी खूबसूरत हो जाती है, और उसके बाद एक दो बच्चे के बाद वो कमर कमरा बन जाता है, और वो फिर जो वज़न करके लाए थे वो वज़न भी काफ़ी भारी हो जाता है, और फिर वो कशिश ख़त्म हो जाती है, और फिर हुस्न की दौलत कम होने लगती है, फिर पार्लरों में भागते हैं, ये झुरियाँ क्यों पड़ गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, दिस एंड दैट। और फिर एक वक्त आता है कि बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह बंदा हो जाता है, 50s 60s 70s 80। कभी किसी बूढ़े के चेहरे को देखें आपको लगेगा घास फूस, पहनना तो सजता नहीं है, और लोग भी कहते हैं क्या ज़रूरत है अम्मा जी को ये पहनने की, अम्मा को क्या करना है ये देकर, खाम का इतना महंगा जोड़ा जाई होगा। अच्छा खा लो तो हजम नहीं होता, घर 2 फ्लोर का बनाया था बड़े शौक से, ऊपर वाले फ्लोर में नहीं जा पाते, महीना गुजर जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं घुटनों में दर्द होता है, बाग बनाया था बाहर जाते हैं तो एलर्जी होती है, और फिर आखिर चूरा चूरा होकर हवाएं लिए उड़ फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये मेरी आपकी कहानी, दिस इज़ आवर लाइफ साइकिल, सूखे पत्तों की तरह। माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, और हाल बता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से और आइंदा की अच्छी तवक्को के बहुत बेहतर है। ये है असल गुण, माल और औलाद को बाकियात सालेहात में डालिए। ये जो भी आपको बताया ये भी यही था सब, आपका खर्च, आपकी हर स्पेंडिंग, हर डॉलर, हर रुपया, हर 5,000, 10,000, 20, 15 एंड पे बाकियात सालेहात में डाल दें। ज़ाया ना कीजिए, खाना ज़ाया नहीं करें, जो खा लिए फ़ौरन दूसरे किसी को दे दें, नहीं अच्छा भी खाना है दोबारा खाना है फ़ौरन फ्रीज़ कर दें, ज़्यादा था आधा निकाल के फ्रीज़ कर दें आधा रख लें। आपको पता है कि होम इकोनॉमिक्स एक टॉपिक होता था, हमारी नानियाँ दादियों को कॉलेजों स्कूलों में नहीं, और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में जाके नहीं था पढ़ना पड़ता। आज होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की फ़ीस ही नहीं दे सकते माँ बाप, इतना महंगा है, और वहाँ जो तरीके सिखाते हैं उसके ऊपर महीने में कितना खर्चा हो जाता है। घरों में ये छोटी छोटी नेकियाँ, ये काम होते थे, अभी का बच्चा कल दूसरे कर दिए, एक वक्त का बच्चा वह सालन अगले वक्त में पुलाव बन जाता था, ये बची हुई दाल है इसमें आटा डालकर मीसी रोटी बना लो, पहले ही होता था आपका मुझे नहीं पता। हमारी बच्चियाँ तो कहती मुझे ठंडा भी नहीं बनाना आता, ये टूट गया, नहीं 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 ये नहीं खाना, अच्छा ये एक्सपायर होने वाला ये नहीं खाना, और बीमार वो सबसे ज़्यादा रहते हैं जो खा लेते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। यदि आप सीखिए बाकियात तो सालियात, आज क्यों हमारे पास बाकियात तो सालियात के लिए नहीं है कुछ, क्योंकि दुनिया पे लग रहा है, जो आ रहा है वो लग भी रहा, जितनी इनकम उतने खर्चे, वेरी सिंपल। थोड़े लोगों का छोटा लाइफ स्पैन होता है, उनके लिए 10,000 5,000 भी बहुत बड़ी चीज़ है, पेट्रोल 2-4 10 रुपये महंगा हो जाता है उनकी जान निकल जाती है गरीबों की, क्योंकि उनका सर्कल बहुत छोटा है, और जिनका बड़ा सर्कल है उनके बड़े काम है, उनको लाखों और करोड़ों का फिक्र है, उनकी तो कमर टूटती है, वो तो बिस्तर पे पड़ जाते हैं डॉलर के रेट के साथ ऊपर नीचे, उनका बीपी जाता है, अब वो क्या करें, उनके शेयर क्या गिरते हैं, उनका तो घर में पारा चढ़ा होता है, बेगम से नाराज़ बैठे हैं उनसे फुलाएं, क्योंकि उनको करोड़ों की फिटीक पड़नी है, उनको गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, एक टैक्स लग जाने या उसके कोई रेशो बढ़ाने से उनकी तो पूरी इंडस्ट्री डूब जानी है, वो तो बैंक करप्ट होते हैं फिर सीधे। तो इसलिए जिसके पास जितना है वो उतने बड़े चक्रों में फंसा हुआ है। अल्लाह कहता है तुम क्या करो, बाकी रहने वाली नेकियां, वल बाकियातु सालिहातु, आपकी बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के पास सवाब और आइंदा अच्छी तवक्को के एतबार से बेहतर हैं, और इस दुनिया में ना रहो, क्योंकि और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और ज़मीन को तुसाफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और इनमें से एक भी बाकी ना छोड़ेंगे, कुछ बाकी नहीं रहना। आज अपनी वार्डरोब को खोलकर एक सिरे से दूसरे पे जाकर देखिएगा, किचन की अलमारियों के ढक्कन खोल खोल कर देखिएगा कितने डिनर सेट हैं, और आप अपने जरा बिस्तरों की तादाद गिनिए, जूते गिने, पर्स गिने, और इसके बाद इस आयत को सोचिए कि एक भी बाकी नहीं रहना, और बाकी होगा तो हम चले जाएंगे, फिर लोग रोएंगे। शुरू से मस्जिदों के साथ ताल्लुक रहा है, कोई फौत होता था ना करीबी घरों में, फैमिलीज में पता लग जाता था, उसके कुछ दिन के बाद फिर उनकी बहू बेटियां बड़ी इज्जत से पहले से बता के आती थी वो मस्जिद में कुछ सामान देना है। इस तरह का एक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, वो याद आ रहा है। तो अम्मा फौत हो गई हैं, तो अब अम्मा की चीज़ें आएंगी, उसके बाद वो बेटियाँ आईं, बहुत अच्छे लोग थे शहर के, और अम्मा भी बहुत नाइस थी माशाल्लाह। आप यकीन करें कि मस्जिद का अच्छा खासा, यानी इस हॉल को आधा करें ना, तो ये सा पूरा वो कार्टूनों से भर गया, अम्मा की चीज़ें आई थी ना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा इसको खोलिएगा, ये है वो, यकीन करें मैं मौजूद थी उस वक्त जब वो कार्टून सिस्टर्स ने खोले, एक पूरा कार्टून चादरों का, दूसरा पूरा कार्टून उनका पर्सों का, जूतों का, और फिर अंडर गारमेंट्स का, कितने सलीके से वो पैक करके सिस्टर्स लाई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये आप खुद क्यों नहीं यूज़ करती, माँ की निशानी, माँ ने पहनी, आपकी जी। कहती नहीं, अपने ही बड़े हैं, आप दे दें किसी को, मस्जिद वाले जिसको मर्जी दे दें, आपके मेरे साथ ये होना है। अगर हमने दुनिया में अपनी चीज़ें खुद अपने हाथ से ना दे दी, कम से कम साल में दो दफ़ा तो चले, यहाँ तो दो मौसम बदलते हैं ना, दो दफ़ा छंटी कर दिया करें, आपके से एक जोड़ा भी ना रहे। कितने हम में से जो ये सोचते हैं, गर्मियों के एंड पे एक जोड़ा भी नहीं हो मेरे पास, और एक सर्दियों के एंड पे ना रहे। आप कहते हैं हाय, फिर अगली दफ़ा क्या होगा, वल्लाह ही अगली दफ़ा उससे भी अच्छे होंगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। बीसियों दफ़ा अपना सूटकेस खाली किया है, जीरो पे, और अल्लाह की रहमत से आज तक कभी खाली हुआ नहीं है। ये जो हम 6-6 साल पुरानी चीज़ें ले लेके बैठे रहते हैं ना, फिर वही नसीब में है, क्योंकि हौसला भी नहीं है और पहनी भी नहीं होती। मज़ा पता है क्या, ये क्यों दे दूँ, ये तो मैंने इतने जिहाद से बनाया था, और अभी सेंड के 6 चक्कर लगाए थे फिर मैचिंग मिली थी, फिर दर्जी को देने से पहले दोराजी में लेसे लेने गई तो 4 दफ़ा गई, जिहाद भी तो इतना लंबा है ना, फिर दर्जी ने 5,000 रुपये लगा के सिया और मैंने तो बस एक बार पहना है, तो मैं क्यों दूँ। तो भाई आपने इसको सजा क्यों दी, हैंग सूली, आपको कोई हैंग करते कितना गुस्सा है, उस जोड़े को आपके ऊपर रोना आ रहा होगा कि बाजी पहन दो मुझे, इतनी तुमने मोहब्बत और अरमानों से बना। आप कहते बारी नहीं आ रही तुम्हारी, मैं क्या करूं, एक ही दफ़ा पहना, और अक्सर सर्दियों और गर्मियों के कपड़े समेटते हुए लोग कहते हाय इस दफ़ा भी नहीं ये पहनना, हाय अभी भी नहीं पहनना, तो ये तो सियाती, दैट इज़ रॉन्ग, इट्स नॉट फेयर। इसको मैं कहूँ या आप कहूँ, या आपकी अलमारी में या मेरी में, इट्स नॉट फेयर। आप रोज़ नए कपड़े पहने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप रोज़ नया जूता लें, नया पर्स पहनकर खुश हों, अल्लाह की, नथिंग इज़ रॉन्ग, बट आपने उसको ज़ाया नहीं करना, उसको बाक़ियात सालियात में बनाए, फिर एवर न्यू रहेगा, फिर आपके पास कभी पुरानी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कुछ लोगों के बरस में कभी छुट्टा नहीं होता, खुले पैसे नहीं होते, क्योंकि वो छुट्टे रखते ही नहीं। तो अल्लाह ताला ये चीज़ें मुझे आपको सिखा रहा है कि तुम इस दुनिया में खोकर ही नहीं, देखिए करते क्या है, फिर इन्हीं को हवा लगा रहे हैं, बिस्तरों को हवाएं लग रही, गर्मियों के कपड़े समेट रहे, सर्दियों के, अच्छा समेट रहे क्यों, इतनी मुश्किल है, दे दें ना सारे किसी उसी मुल्क में जहाँ बहुत गर्मी है, नहीं, ये कैसे हो सकता है ना। तो ये यहाँ से निकालिए, आपको इन चीज़ों से दिली मोहब्बत ना हो लेकिन खुश हो, बच्चों से मोहब्बत हो लेकिन उनको देख कर ये ना लगे कि इनके बगैर मैं जी नहीं सकती। तो बहरहाल ये एक बड़ा लंबा चौड़ा नज़रिया है, इस वक्त तो इस पर इतनी बात ना ही करूँ तो बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या आगे देखिए, और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हाजिर किए जाएंगे, यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर करेंगे भी नहीं, और ना मैं अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा गुनाहकार इसकी तहरीर से खौफ ज़दा हो रहे होंगे। इसको नोट कर लें, एंट्रीज इंदराजात, और बोलूँ इन्वेंट्रीज, मेरे आपके सामान की इन्वेंट्री पे मैं खौफज़दा होंगी कि आज इतनों के ऊपर टैक्स लगना है, आज इतनों को तुलवाना है, आज इतनों ने लगेज में जाना है और वज़न होना है, तुलवा रहे होंगे वहाँ ट्रकों के ट्रक खड़े होंगे हमारे, और हम अपने हिसाब किताब कर रहे होंगे, और उस दिन सबसे ज़्यादा डर लगेगा बंदे को अपने अमलनामे से, और कह रहे होंगे हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा गुनाह बगैर घेरे बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म और सितम ना करेगा। सुनिएगा हदीस वाक़यात सालेहात पे 46 आयत पे। अबू सईद खुदरी से रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाक़यात सालेहात की कसरत किया करो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इससे क्या मुराद है? आपने फरमाया, मिल्लत। किसी ने पूछा, इससे क्या मुराद है? फरमाया, मिल्लत। तीसरी मरतबा सवाल पूछने पर फरमाया कि इससे मुराद तकबीर, तहलील, तस्बीह, तहमीद और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 11713। क्या पता चला कि जुबान खाली रहती है ना, सुबहान अल्लाह पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, और ये कुछ, यानी जुबान से भी तो आप नेकियां कमा सकते हैं। तो मोमिन हर मुमकिन तरीके से अपनी हर नेमत से फायदे की कोई ऐसी चीज रखता है जो उसके अगले हिसाब में जमा हो। साहबे कराम ने बाकियात सालेहात का मफहूम कैसे समझा? नंबर एक, अपना सारा माल दीन की खिदमत में लगाया। दलाइल देने की अब जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी औलादों को अल्लाह की राह में लगाया, बहुत कुछ कहने की जरूरत है इस पे। और आज मुझे माशाल्लाह बच्चियां यंग दिख रही हैं, सैटरडे संडे सबको लाया करें। चले दुनिया के कैदी हैं, बाकी दिनों में तो पढ़ते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे अपनी बच्चियों को और भी लाया करें, बच्चों को भी लाएं, 8-10 साल के लड़कों को भी लाया करें। इन मासूमों के कानों में इस उम्र में ये हुज्जत तमाम हो गई, आपसे भी आगे दीन में निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर तीसरी बात, अपनी औलाद की तरबियत ऐसी की कि वो नेक और साले बने। महज बाप और अमैं अपना अपना कर सकते हैं। हम क्या करें इस रुकू के बाद? बाकी रहने वाली नेकियां करनी है, आखिरत का यकीन रखना है, दुनिया फानी है इस पर मुकम्मल यकीन करना है, और नामे आमाल की फिक्र करनी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। कोई अच्छी सी नीयत करें, कोई इरादा करें। आप देखिए कि कई लोग अपने दिल खोल के अल्लाह के रस्तों में देते हैं ना, कभी कभी हमें भी गवाह बना देते हैं कि आप इसको दीजिए। जिम्मेदारी का एहसास होता है, उस एक एक चीज़ को अपने जाती सामान से ज़्यादा हिफाजत से अल्लाह की रहमत से डिस्पोज किया जाता है। कई जगह मीना बाजार लगते हैं, कई जगह चीज़ों को, स्पेशली गोल्ड, ऐसे नहीं पकड़ के जाके सुनार को बेच के आगे, वो आपको क्या देंगे? 100 में से 60 भी नहीं मिलेंगे आपको, और भी कम। और अगर उनको पता चल गया कि आप जैसी, जिनको पता ही नहीं सोना चांदी फर्क क्या है, तो वो तो 40 ही देंगे आपको। फिर एक एक चीज़ को नाप तोल तरीके सलीके से कोशिश की जाती है कि जिन्होंने दिया उनका ज़ाया ना हो, और इसकी बरकत भी होती है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए कि ये चीज़ें, जैसे मिसाल है कि कोई फूल दे देता है, अब तो अल्लाह का शुक्र है लोग काफ़ी कम हो गए हैं फूल देना। जहाँ जाओ लोग फूलों का बके लेके खड़े हैं, स्पेशली ट्रिप्स में बहुत होता है। हर दिन, हर रोज़ अगर दुकान खोल लें तो पूरी फूलों की दुकान खोले। तो मैं अक्सर उनसे कहती थी, आपने मुझे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर, लेकिन अब ये मैं ले जाऊँगी, और मैंने तो अगले दिन दूसरी जगह जाना है, वो घर वालों की मौजें हो जानी है, कोई और ले ले, रूठे हुए शोहर को मना ले। ये फूलों का गुलदस्ता खरीदिए और इसके पैसे आप अलबरका में डाल दें। यकीन करें, वो एक जो 20 यूरो का भी कहीं से मिलता होगा ना, वो कई दफ़ा 200-200 यूरो का लोग ले जाते हैं। कई उसका एक एक फूल सबको बांट जाते हैं कि मुझे पता है आपके भी शोहर नाराज़ हैं, उनको दे दीजिएगा। जिसने आपको फूल दिए 20 यूरो के, मिसाल है, यहाँ का मुझे नहीं पता कितने कहते होंगे, उसके पैसे लगे, उसने मुझे इज्जत दी, मुझसे मोहब्बत की, उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं उसको क्या करूँ? बाकियात सालेहात, उसका फ़ायदा हुआ ना। वो पैसे अगर 200 बन के स्कूल में डल गए, और वो 200 बन के एक यूथ सेंटर में चले गए, वो आपके किसी प्रोजेक्ट में लग गए, वो फूल तो गए और वो आखरत की दीवारों पे चुन गए। ये हिकमतें मांगे अल्लाह से, और ये बड़ी मन्नतों मुरादों से ये हिकमतें समझ आती हैं। तो पैसे को हमेशा, चीज़ को हमेशा रिसाइकल कीजिए। आपको एक फूलों का गुलदस्ता मिल गया ना, अब आप जाके अम्मा जी को दें, अपनी को, अम्मी आपके लिए। अम्मा जी ने थोड़ी देर पर रख देना, वो मियाँ साहब भी आएंगे रूठे हुए, गुस्से में भरे हुए, मियाँ साहब ये आज आपके लिए फूल आए हैं। मियाँ साहब ने भी 2-4 मिनट के बाद कहना, क्या मतलब है, आज के 14 फरवरी है, चलो जी। अब उसके बाद आप वो फूल उठाएं, किसी और का दिल खुश कर दे, और पैसे नहीं आते ना, दिल खुश कर दिया करें। हमारे घर एक मिठाई का डब्बा आ जाता बेचारा, आजकल रोज़ शामत आई हुई है, अच्छा थोड़ा थोड़ा लेके बाकी रुलता रहता है, फिर इधर से उधर उधर सूख रहा है, कभी इधर रुक रहा है, कभी कुछ, कोई बच्चे वाला घर है तो खाई भी जाती होगी। आपको समझ आ गई है कि आप बस जिन्होंने खानी थी खा ली, आप उसको अच्छी तरीके से, अच्छे जो उसके साफ पीस हैं, एक अच्छी प्यारी सी प्लेट में डालें, इस हमसाए में भेज दें, उनको भेज दें, ऊपर भेज दें, नीचे भेज दें, और स्पेशली अगर आपका इदारा है, कभी आप किसी नूरुल कुरान के इदारे से मिठाई भेजें हमसायों को, वो कहेंगे ये कौन सा स्कूल है जो मिठाई देता है, हम तो हमेशा मस्जिदों और मदरसों को देने वाले थे। वो आपसे करीब होंगे, रोज़ खाना बनता है, नया फ्रेश खाना बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, कैंटीन जहाँ भी होती है, तो बच गया ना। अब इसकी छोटी छोटी प्लेटें बनाएं, जाए नेबर में, वो नीचे दे दें, उनका ऑफिस है उनको दें। अच्छा स्कूल से आया है, ये तो कोई बड़ा ही अच्छा स्कूल है, ये खिलाते पिलाते हैं, आपका क्या गया, आपका खाना रोज़ बचता है। और यहाँ तो नौकरों का अल्लाह की रहमतों से बहुत बड़ा आपको ये भी एक फ़ायदा है कि आपका खाना नहीं ज़ाया होता। बाहर की दुनिया में आपकी एक बाइट बच जाए, आप नहीं खानी है या फेंकनी है, वहाँ हमने ग्रीन डब्बे रखे हुए, उसमें ढस से फेंक देते हैं, जी खाद बनेगी तो सारा कुछ खाद में डाल दें आप। तो चीज़ों को वेस्ट ना कीजिए, अल्लाह को ये चीज़ इतनी पसंद है, मैं गवाही दे सकती हूँ कि इसकी बरकत समेटी नहीं जाती। आगे चलते हैं, अगला किस्सा आदम और इबलीस का, रुकू नंबर 19, 50 से 53 है। शैतान की पैरवी करने वालों का बुरा अंजाम, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वह तुम सबका दुश्मन है, ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है, मैंने इन्हें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था और ना खुद इनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं, और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब ना देगा, हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे और गुनाहगार जहन्नुम को देख कर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह ना पाएंगे। क्या पता चला अमल के नुक्ते, शैतान को दोस्त नहीं बनाना, जुल्म नहीं करना, गुमराह नहीं होना और शिर्क नहीं करना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि हम अमल करें इन सब बातों पे। रुकू नंबर 20, 54 से 59, अल्लाह की आयात से वो मोड़ने वाला जालिम है। वलकद सर्रफ़ नफ़ी हाज़ल क़ुरआन, हमने इस कुरान में हर हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है, लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इस चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियाँ सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें, उन्होंने मेरी आयतों को और जिन चीज़ों से डराया जाता है इसे मजाक बना डाला है, इससे बढ़कर जालिम और कौन है जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे और जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेज रखा है इसे भूल जाए। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे ना समझें और इनके कानों में गिरानी है यानी बोझ, गो तू इन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे लेकिन ये कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है, वो अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्दी जल्दी अजाब कर दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सिरकने की हरगिज जगह न पाएंगे। ये हैं वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालम की बिना पर गारत कर दिया और इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। क्या पता चला अमल करना है, ईमान लाकर रब से बख्शिश मांगनी है, हक को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, अल्लाह की आयात और तंबीहात का मजाक नहीं उड़ाना, नसीहत से मुंह नहीं फेरना और अपने बुरे अमाल को भूल नहीं जाना। गिन गिन के रखिए अपनी एक एक चीज़ को। इसके आगे अब है जी चौथा फितना, तरतीब को अगर सामने रखें, इल्म का फितना। आइए पढ़ते हैं और फिर बात होगी। रुकू नंबर 21, आयत नंबर 60 से 70। वइस काल मूसा लिफताहुला अब्रख, इल्म हासिल करने की जुस्तजू, जबकि मूसा ने अपने जवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, ख्वाह मुझे साल हर साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, वहां अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने जवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहीं मैं मछली भूल गया, दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं, इस मछली ने एक अनोखे तरीके पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाते वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमाई थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इससे मूसा ने कहा, मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया। इसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। इल्म और सब्र साथ साथ, और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो, इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने जवाब दिया कि इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूँगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज़ की निस्बत मुझसे ना पूछना जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तذکرہ ना कर दूँ। क्या पता चला कि सवाल जवाब QA सेशन की इजाज़त नहीं थी। तो इल्म का शौक देख रहा है आपको इस वाक़े में। इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए, तबरानी की 131 रिवायत है। सफ़वान बिन असाल रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपनी सुर्ख चादर पर टेक लगाए मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैं आपके पास गया और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हसूल इल्म के लिए आपके पास आया हूँ। आपने फरमाया, तालिब इल्म को मरहबा। मैं भी इसी सुन्नत पे आप सबको बोल दूँ मरहबा, वेलकम, वेलकोमन, मैसी और न जाने क्या कुछ। शुक्रिया, बखैर आगले, कोई है पठान? अहलन वसहलन, जी आया नू। चलिए, और अल्लाह पता नहीं कितना खुश होता होगा आपको आता देखकर। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म को घेर लेते हैं और इस पर अपने परों से साया करते हैं और कसरते तादाद की वजह से एक दूसरे पर सवार होते हुए ऐसे ऊपर नीचे जैसे पायलट होना आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जिसको तालिब इल्म हासिल कर रहा होता है। तो आपको नहीं पता कि यहाँ कितने फरिश्ते हैं इस वक्त। अगर कोई कोना खाली है ना तो फरिश्ते हैं, कोई कुर्सी खाली है वहाँ भी फरिश्ते हैं, और रेड कारपेट फरिश्तों के परों को महसूस करते हैं आते हुए, और समंदरों की मछलियाँ आपके लिए दुआगो हैं, परिंदे आपके लिए दुआएं करते हैं। कभी आपका रुका हुआ काम एकदम हो जाए ना तो समझिएगा किसी मछली की दुआ लग गई, किसी चिड़िया की, किसी बुलबुल की, किसी मोर की दुआ लग गई आपको। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं, यकीन रखा करें। तो इल्म के हासिल करने के सुनहरे असूल आयत 66 से 69 में नंबर 1, नंबर 1 बेग करके लिखे सब्र, पेशेंस। पेशेंट कौन होता है? बीमार पेशेंट पेशेंस वाला होता है, सब्र के बगैर इल्म नहीं आता। फिर आज सी बींग हम्बल, आप सीने पे हाथ बांध के पाँव पे पाँव चढ़ा कर बैठ जाएं, इल्म नहीं आएगा। आज सी के साथ ये जो इल्म की महफिल है ना, इसमें अपना पोस्चर आजीज बनाए, कमर छोड़ के सिर झुके हुए, इधर से मोमबत्ती की तरह इंशाल्लाह झुक जाएंगे और अकड़े होंगे अंदर बाहर से तो यहाँ से अकड़ के निकलेंगे। इल्म की महफिल में ख़ास तौर पर अच्छे अच्छे फैसले किया करें, क्योंकि यहाँ आप अपनी असल पे आए होते हैं। और इल्म के आगे भी आजिज़, किताब के आगे भी आजिज़, इल्म देने वाले के लिए भी आजिज़। आज उस्ताद का अदब न रहा, न साइंस पढ़वाने वाले का, न केमिस्ट्री, न फिज़िक्स, और देखा देखी फिर दीन वाले भी हमारे ज़र खरीद हो गए। फिर तीसरी चीज़, इल्म हासिल करने की लगन हो। लन अब्रख, मुसा कह रहे मैं नहीं टलूंगा, चलता ही जाऊंगा। हम दिया हुकूबा, हुकुब हुकुब, यानी सदियों सदियों चलता रहूँगा। हम कितने दिन के इंतज़ार में, कितने दिन के लिए आए हम दौरे कुरान रमज़ान में? बस ख़त्म, दैट्स इट, एनफ इज़ एनफ। इतना ही सब्र था हमारा? नहीं, अब नहीं टलेंगे हम इंशाल्लाह। और अगर मैं कह दूँ कि हम दौरे कुरान कंटिन्यू रखेंगे रमज़ान के बाद, तो कितने लोग आएंगे? माशाल्लाह। और फिर तो आपको मज़े मज़े के खाने भी मिलेंगे जैसे आपको रमज़ान से पहले मिलते थे, है ना? अल्लाह ज़ाहिर नहीं करता, ये हमारा एक रस्म बन चुकी है। मैं आपको सच कह रही हूँ, अगर दौरे कुरान मैं ना पूरा करूँ और आपसे कहूँ कि ईद के दूसरे तीसरे दिन ईद पार्टी भी है और आप आ जाइए, कितने लोग आएंगे? आएंगे ना, क्या हर्ज है? और देखिए ना, हमने शुरू भी तो रमज़ान से पहले किया था, क्या वो ज़ाया हो जाता है? उस समय उनका जाया होता है जिन्होंने जमा तफरीक लगाई होते हैं, एक नेकी 70 की 70 सुन्नत फर्ज फर्ज नफिल नफल, और अच्छा, नहीं 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 ये बाहर निकल के तौबा तौबा, शबीने के तौर पर रातों रात कुरान पूरा करो, नथिंग। आज भी ऐसी मस्जिदों को मैं जानती हूँ वो पूरा कुरान तो नहीं कराते, लेकिन आप एक दिन उनके पीछे तरावी पढ़ाएं मज़ा आ जाता है। वो छोटी सूरतें लेते हैं और इतनी रिक्कत से पढ़ाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। 8 तरावियों में 6 तो सूरतें छोटी छोटी पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। ये रस्म है, ये जो हमारे यहाँ तरावियों में भी ख़त्म हो रहे हैं और दुआएं हो रही हैं और फिर इसके बाद जो कुछ है, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है, बुरी नहीं है, हम कोई इसको बिदत नहीं कह रहे, लेकिन ये एक तरीका है हमारा। तो इल्म हासिल करने की लगन मरते दम तक, फिर फरमा बरदारी और उस्ताद का अदब और इताअत, बाअदब आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते, इल्म हासिल करना है, सब्र करना है, इल्म के लिए सफ़र करना है, उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी, उस्ताद को ऑफेंड नहीं करना, ज़्यादा सवाल नहीं करना, और उस्ताद के हुक्मों की ताबेदारी करनी है। अगली चंद आयात भी इसी से मुतल्लिक हैं, 71 से 74। सब्र के बग़ैर इल्म का हसूल मुश्किल है, फ़ंतलका हत्ता इज़ा रकीबा फिस्सफ़ीना। फिर दोनों चले कौन, उस्ताद और शागिर्द, यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए, खिजर अलैहिस्सलाम ने इसके तख्ते तोड़ दिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डबो दें, ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। खिजर ने जवाब दिया मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए। आजिज़ी देखें, साहिबे तौरात हैं, नबी हैं, और उस्ताद के आगे कैसे आजिज़ बने बैठे हैं। और हाँ, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, उस्ताद भी अच्छे थे, उन्होंने एक दफ़ा ओवरलुक कर दिया, एक और मौका दिया, यहाँ तक एक लड़के को पाया, खिजर ने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक पाक जान को बग़ैर किसी जान के इवज़ मार डाला, बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। ये है तनकीद करने वाले शागिर्द, और ऐसा एक दो भी होना तो काफ़ी होता है, क्योंकि उस्ताद सीधा रहता है कि ये आप जो करेंगे ना ये भुगतना पड़ेगा। तो अमल की बातें, हक की तलकीन करनी है, इल्मी मैदान में सब्र करने की हकीकत को समझना है, और हर काम के पूरा होने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना है। आपका मेरा मुहासबा, 12-15 पूरा हो रहा है इधर, क्या असहाबे कहफ की तरह मैंने लोगों के गलत अकायद के खिलाफ जाके इनके सामने तौहीद का अकीदा रखा है, यानी तबलीग की है? मैंने कभी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल को सरफ किया? मैंने किसी की परवाह किए बगैर सिर्फ सच का साथ दिया? और अगर दिया तो मुबारक हो, आप मुबारक के लायक हैं। इंशाल्लाह यहाँ पारा पूरा करके अगले पारे के साथ बाकी चीज़ें इस वाक़े और इल्म से मुतल्लिक करेंगे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।